जय राधव कुंज बिहारे
यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 27 पर 3 जून 2016 को इस्कॉन दिल्ली में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाई भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपने पढ़ा किस प्रकार तो उसी प्रकार प्रभु कह रहे हैं पर भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते उस सबके प्रति बिल्कुल समानता का भाव रहता है बिल्कुल भेदभाव नहीं ये सोचने की भेदभाव है भगवान ज्यादा कृपा दे रहे हैं मुझे नहीं ये गलत है और यही महाप्रभु के द्वारा चौथे अध्याय का प्रश्न श्लोक यही दोनों देते भजन देना जितनी मात्रा में कोई मेरे शरण में आएगा उतनी मात्रा में ही मैं उसकी सुरक्षा करूँगा। पापा जी आगे जाके उदाहरण देते हैं, कई धनी लोग भारत में जिनके पास संपत्ति है, संपत्ति तो दे देंगे बीवी बच्चों को और कहेंगे हम नाम जा रहे हैं हमें सब कुछ जा रहे हैं। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम आपके आश्रम में रह सकते हैं, मैंने छोड़ दिया तुम्हारे घर वालों के लिए और रहना चाहते हैं आश्रम में। तो बाबा जी कह रहे हैं बाबा जी कह रहे हैं कि छोड़ दिया है अपनी बच्चों पे और कहते हैं सौ दो प्रभा जी कह रहे हैं कि आप ये भावना से भगवान के शरण करोगे पूरी सुरक्षा में मिलेगी, ये मत सोचो कि आप भगवान के नाम के लिए सेवा करोगे और पूरी सुरक्षा प्राप्त होगी। ये भाव होना चाहिए तो प्रभा जी का मूल संदेश ये है कि हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए जो किसी के पक्ष में नहीं है और जो कि सबके प्रति बिल्कुल समानता का व्यवहार करते हैं सबके साथ। और आगे जाकर बाबा जी भी कह रहे हैं अब ये मत सोचो कि परम भगवान हर जी के साक्षी नहीं है, और आगे बाबा जी कहते हैं परम भगवान नहीं ये जो आचार विग्रह है वो भी साक्षी है। कई बार हम सोचते हैं ये तो मूर्ति है पत्थर की पीतल की लकड़ी की, पर हम भूल जाते हैं कि इस आचार विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। प्रभा जी ये साबित कर रहे हैं कि हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी बनते हैं, अनेक साक्षियों में एक साक्षी है भगवान जी आचार्य गोवर्धन के तीसरे स्कंध में देवहूति ने अपने पुत्र कपिल ने से पूछा ये बताओ कि कैसे निर्णय किया जा रहा है किस प्रकार हमें प्राप्त होगा, क्योंकि कई बार जब आप विचार करते हो खास करके इस विषय का आत्मा सनातन है श्री नरेश्वर तो कई बार लोग पूछते हैं मान लिया साक्षी कौन है हमारे कर्मों में जो कार्य करते हैं उसका तो साक्षी है कामन देव सेना जंतु देव अनेक साक्षी है सूर्य के देव चंद्रमा तारे और परमात्मा तो आचार्य के साक्षी बनते हैं। आप साक्षी गोपाल की कथा में क्या पढ़ते हो जब उस गरीब ब्राह्मण ने गोपाल विग्रह से प्रार्थना की मेरी इज्जत का प्रश्न है मुझे आरोप दिया जा रहा है कि मैंने धनी व्यक्ति को भंग दिला दिया। आप साक्षी थे कि उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी की शादी मेरे साथ हो गई। भगवान ने भक्ति परीक्षा ली, भगवान ने कहा तुम कहते मैं साक्षी बनूं मैं तो वृंदावन में हूं फर्क भी क्या है, अगर आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। भगवान अपनी हार मान गए और भगवान साक्षी बन गए। महाजनकपुरी की कथा में आप पढ़ते हो कि जब महाजनकपुरी गोपाल विग्रह की स्थापना करने के पश्चात वृंदावन में भगवान ने आदेश दिया मैं प्रसन्न होंगी तो मैं मेरी स्थापना की, तो मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मैं चंदन ले लाऊं। कुछ दिन पहले ही चंदन यात्रा समाप्त हुई, इसमें स्नान होगी महानंदपुरी की प्रेरणा से पृथ्वी पर है। तो महानंदपुरी ने गोपाल विग्रह के देखभाल दो ब्राह्मण के हाथ छुआ और वो चल पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ भगवान के लिए चंदन लाने के लिए। जब वो रेवना के मंदिर में पहुंचे तो उन्हें याद आया कि ये जो विग्रह है नाला गोपीनाथ का बहुत ही प्राचीन है। ऐतिहासिक कहा जाता है कि जब भगवान राम पृथ्वी पर आए थे उन्होंने सीता देवी से कहा कि द्वारका युग में मैं यीशु में प्रकट होगा और उन्होंने विग्रह बनाया। तो महानंदपुरी सोचने लगे कि अगर मुझे यहाँ की खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं लौट कर अपने गोपाल के लिए भी ऐसी खीर बनाऊंगा। जैसे कि भौतिक समाज में हम ले जाते हैं टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, उसी प्रकार इसका मैं भी आप देखते हो हमें एक दूसरे से सीखते रहते हैं। अगर किसी में ज्ञान योग्यता है तो उसे हम सीखते हैं, जब हम नई बात होते हैं उनसे सुनते हैं सीखते हैं उनकी ज्यादा योग्यता, जब वो योग्यता हमें आ जाती है यही शिक्षा दूसरों को देते हैं। महाजनकपुरी ने सोचा कि अगर मुझे यहाँ की खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं अपने विग्रह के लिए ऐसी खीर बनाऊंगा। तो ये भावना प्रकट हुई जब भगवान को भोग लग रहा था। नियम यह है कि जब आप भोग खा रहे हो आंखें मन में भाव होना चाहिए ये भोग बन रहा है भगवान के लिए, और महानंदपुरी शर्मिंदा हो गए कि मेरे मन में ये भावना प्रकट हुई ये भोग लगा था और चखे बिना जान में चले गए अपना भजन करने के। भगवान ने क्या किया, अपने भक्त की प्रशंसा के लिए एक खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिए और पुजारी को सबने कहा मैंने अपने प्रसिद्ध भक्त महानंदपुरी के लिए खीर का प्याला छुपाया है। तो इस उदाहरण से आपको क्या शिक्षा मिली, ये विग्रह जिन्हें आप देखते हो ये विग्रह पत्थर के नहीं है, यहाँ स्वयं भगवान है। जब ठाकुर जी का रूप शास्त्र पर आधारित बनाया जाता जब ठाकुर जी की स्थापना शास्त्र के आधार पर की जाती है ये ठाकुर जी भगवान है। अंतर है
नहीं है,
कोई अंतर नहीं। चाहे आप शालिग्राम श्रीनगर देख रहे हो कोई अंतर नहीं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने प्रवचन में भगवान के प्रति कोई भेदभाव नहीं है और भगवान के जो विग्रह हैं वो हर चीज के साक्षी बनते हैं। तो हमें भूलना नहीं चाहिए भगवान जी के साक्षी। कभी कभी हमारे मन में भाव है, मैंने इतनी सेवा की किसी ने मेरी प्रशंसा ही नहीं की, सेवा की किसी ने जीने का शाबाश आ सकता। हमें भूलना नहीं चाहिए पर भगवान हर जी के साक्षी है। हमें हमें अभाव भी प्रकट करना चाहिए, ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए। कभी कभी कई व्यक्ति छूट जाता है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, हमें मन में भाव रहना चाहिए पर भगवान हर जी के साक्षी। तो प्रभुपाद जी इसी विषय पर बल दे रहे हैं कि हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हम बिना किसी प्रकार की इच्छा के साथ, इच्छा के बिना भगवान की सेवा करें। और इस विषय पर प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंह एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक का उपयोग किया है। कौन सा श्लोक है? बहुत ऊंचा हुआ था। उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा नवाब हुसैन शाह के राज्य का शासन कर रहे थे। उनकी रुचि नहीं थी इसमें, उनकी रुचि थी भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए। उनकी रुचि थी चैतन्य महाप्रभु के साथ यात्रा करने का प्रचार करें। उन्होंने एक पत्र भी लिखा था चैतन्य महाप्रभु को, जबकि वो कार्य कर रहे थे लगभग प्रधानमंत्री के समान। उन्होंने महाप्रभु से कहा मेरा दिल नहीं लगता यहाँ नौकरी में, मैं आपके साथ चलना चाहता। महाप्रभु ने उत्तर दिया, कहा अभी रहो अभी मत छोड़ो। एक उदाहरण दिया जिसके उदाहरण का उपयोग प्रभुपाद जी करते हैं गीता की भूमिका में। एक विवाहित स्त्री अगर उसका प्रेमी हो तो वो तो बड़े ध्यान से घर में सेवा करेगी, यही सोचेगी कब जाऊंगी अपने प्रेमी को मिलने। तो चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया तुम नौकरी करते जाओ मन में यही सोचो भगवान की सेवा कैसे करो। खैर थोड़ी देर बाद स्वामी ने नौकरी त्यागी। जब नौकरी त्यागी उनके पास इतने सोने के सिक्के थे पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। और उन्होंने 50% धन ब्राह्मण को बांटा, 25% इस धन और 25% रखा भविष्य की आवश्यकता। और चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार तीन कार्य पर उन्होंने बल दिया। भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना, मंदिरों का निर्माण और उन स्थानों को खोजा जहां की पर भगवान ने अपने दी। तो ये ग्रंथ बाकी रचना से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें भक्ति की विधियों का वर्णन किया जाता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने प्रवचन में कि हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम 100% समर्पण हो किसके चरणों में। और कौन सा श्लोक है गीता का जिसमें ये संदेश प्राप्त होता है? प्रभुपाद इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हम 100% परम भगवान के शरणागत हो जाए, ये नहीं 10% 20% कई बार हम भटकते हैं, शुरू करते हैं 5% से, 2 माला फिर जान स्वर्ण माला पहुंचने पर भी पूरा समर्पण नहीं करते। मैं कईयों को जानता हूं, संपत्ति रखते हैं घर वालों के लिए, मंदिर जाते जाप माला के तौर पर, चेक बुलाते मंदिर आते जाप माला लेकर, तो माला का जाप कर रहे हैं जो भी हम भिजकते हैं भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं। कह रहे हैं बिना हिचके हुए हमें परम भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। राग जाकर प्रभा जी उदाहरण दे रहे हैं कि जब वो विदेश गए थे, विदेश की यात्रा आरंभ करने से पहले, जैसे प्रभा जी ने आज के लेक्चर में कहा, वो गए थे सीधा मायापुर था। उस समय उन दिनों में इसका संस्था का कोई केंद्र नहीं था मायापुर में। गए थे अभी गुरुनाथ की समाधि में प्रणाम करने के लिए, उनकी आशीर्वाद स्वीकार करने के लिए। प्रभा जी कहते हैं मैं निकला था भारत से कितने रुपए के साथ,
40 रुपए
निकल भाषण से 40 रुपए के साथ। उन दिनों में 40 रुपए $60 के बराबर, और रास्ते में प्रभा जी ने भगवान बस है जो जहाज के कैप्टन थे पांडे, उन्हें भेज दिया। तो प्रभा जी कह रहे हैं प्रभा ने 40 रुपए के साथ भारत से निकला था, भगवान की कृपा से 40 करोड़ की संपत्ति बना दी। उनके सपनों की संपत्ति अपने अरबों में जाएगी। ये तो अभी प्रणाम तो प्रभा ये उदाहरण दे रहे थे कि भगवान के शरणागत होकर कोई गरीब नहीं बन। एक समय चैतन्य प्रभु सन्यास लेकर तेजी के साथ जा रहे थे जगन्नाथ जी का दर्शन, रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो एक औरत लस्सी बेच रही थी। महाप्रभु ने उसकी पूरे पट्टे की लस्सी पी ली। तो एक मिनट में तो थोड़ा ने कहा पैसा पैसा। महाप्रभु ने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है, पर मेरे पीछे मेरे साथी हैं वो पैसा है। थोड़ी देर बाद भगवान जी नंदा पहुंच गए और औरत ने कहा तुम्हारे एक सन्यासी ने मेरी सारी लस्सी पी ली और कहा आप लोग इसे पैसे करो। भगवान जी नंदा ने कहा हमारे पास भी पैसा नहीं है। लॉर्ड ने कहा ठीक है, सन्यासी को कह देना मेरी तरफ से वो चंदा था, अब मैं घर जाती हूँ। उस औरत ने मटका उठाने का प्रयास किया, वास्तविक रूप से तो मटका खाली हो गया, उठाना तो बड़ा सरल हो गया। पर जब मटका उठाने गई इतना भारी था कि वह हिला भी नहीं सकी, तो आश्चर्य हो गई थी क्या हो गया, अभी तो भारी था बिल्कुल, इतना भारी है अंदर देखती हूँ क्या है। मटका धैनों से भर गया था। भगवानों के बगैर कोई कभी प्रीत नहीं होता, चाहे आप भगवान को धन दो, चाहे भगवान का अपना धन दो, कई बार हम धन देने से डर रहे धन ले लो पता कहेंगे। इसके लिए हम पर ऐसी योजना है लाइफ मेंबरशिप की, दूसरी योजना है, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर का पता था यार मेरी तरह मन नहीं लेगा धन देने के ज्यादा तैयार नहीं। इसलिए हमारे पास ऐसी योजनाएं हैं जिसके द्वारा लोग लाइफ मेंबर बनते हैं, चलना देते वगैरह लोग थोड़ा ले लो और वह कहते हैं नहीं धन मान धन सब भगवान के चरण। जैसे ठाकुर भक्ति बड़े महान आचार्य थे और हालांकि प्रियस्थ आश्रम में थे पर पूरे रूप से भगवान के चरण में थे। उन्होंने कहा मेरा मन बुद्धि धन सब कुछ ये होना चाहिए मन से दया किया क्योंकि जीवन अर्पण धन मन धन सभी आपका है। तो प्रभा जी इसी विषय पर बल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सुनामी आयु से जितना चाहिए उतना प्राप्त हो सकता है। और इसी प्रकार मानवीय भावना होती है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। और प्रभा जी शिष्यास्त्र का के चौथे श्लोक का वर्णन करते हैं, क्या है वो
श्लोक?
तो चैतन्य महाप्रभु कहते तो भगवान है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नारायण प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। तो शिक्षाशा के आठ श्लोकों में उन्होंने पूरे शास्त्र का संदेश प्रस्तुत कर दिया और ब्रह्मा जी हमें याद दिला रहे हैं अपने प्रवचन में मुझे धन नहीं चाहिए। धन नहीं चाहिए पागल हो सुंदर स्त्रियों की संगत भी नहीं चाहिए और भौतिक शिष्य भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए? क्या कहते हैं? हर जन्म में सेवा का मौका देंगे। ठाकुर भक्ति नर जी अपनी एक प्रार्थना में कहते हैं अगर आप मुझे खीरे के रूप में जन्म लेना चाहो तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। मेरी एक ही प्रार्थना है कि अगर खीरे के रूप में जन्म लोगे तो किसी को ऐसा नहीं करना। तो दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु की इच्छा प्रकट कर रहे हैं मुझे हर जन्म में भक्ति का मौका मिले। तो ये होना चाहिए हम सबका उद्देश्य, ये होना चाहिए हम सबका भाव। आप कहोगे तो ये भाव तो नहीं है हमारे में, अगर सच्चाई से देखा जाए हम ये उम्मीद भी नहीं करते कि ये भाव आपके आप कहोगे ये भाव हमारे में अनुकूल हो गया है तो विश्वास करना ना करते हैं। पर ये भाव आप अनुकूल कर सकते हो अगर आप श्रवण और कीर्तन में ध्यान दो। हम लोग भगवत क्लास करते हैं, हफ्ते में एक दफा प्रभात क्लास सुनते हैं और संदेश के लिए है, संदेश ये है कि हमें परम भगवान के शरण में साधु संघ पर बल दिया गया। प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं, आप प्रभुपाद जी का कोई लेक्चर सुन लो, अंत में आदेश एक ही है। क्या प्रभुपाद का आदेश? वही जो ऋषि भगवान का आदेश है, क्या हमें शरण न होते हैं, शरण भगवान के शरण में समझे। नास्ति प्रयेषु उपदेशु नित्य भगवत सेवया, भगवती वर्तमान श्लोक है बाकी भारती नये श्री। अगर ध्यान से ये श्रीमान भागवतम को नियमित रूप से सुनेंगे तो हमारे हृदय में जो भौतिक आकर्षण है वो भी निकलेगा और परम भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए भागवतम को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग बहाना ढूंढते हैं भगवतम से छोड़ने के लिए, पर झूठ लोगे तो आपका नुकसान है। सुनोगे देवी के साथ अध्यात्म परिवर्तन हो, इसलिए हमें श्रवण के दिन पर बल देना चाहिए। जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को उसने संक्रमण का सिखाया था, मेरे बेटे को कौन शिक्षा दे रहा है भक्ति के विषय में? मुझे लगता है कि वैष्णव लोग पेश बदल कर आ रहे हैं मेरे बेटे का दिमाग बदलने के लिए। तो संधा करने का भाव मान हम उन्होंने बेटे को ठीक कर देंगे, तो ब्रेन वॉश कर देंगे। और उन्होंने कहा अभी आप देख लो परीक्षा ले जाओ, उठेगा आप सर्वश्रेष्ठ। जब पिता ने पूछा कि ये बताओ जो शिक्षा प्राप्त की है उन्हें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी शिक्षा, बेटे उन्होंने उत्तर में क्या कहा, श्रवण के पाल से आशा मान दर्शन सत्य आत्मदेना श्रवण के इतना, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम सुबह जाप करते हैं फिर भगवान सुनते हैं तो चेतना शुद्ध हो जाती है। जब चेतना शुद्ध हो जाती है फिर हमारे मन में भाव रहता है कि हम श्रवण के दिन में रुचि ले सारा है। अगर सुबह के समय हम जाप नहीं कर रहे हैं और भगवान की तैयारी भी नहीं है तो फिर क्या भावना रहती है? भौतिक आकर्षण बढ़ जाता है, आध्यात्मिक आकर्षण घट जाता है। और जब आप शरण करते हो आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ता है, भौतिक आकर्षण घट जाता है। भगवान का सूरज में जाते हैं और माया का सूरज। और जब आप सुबह ध्यान शरण मिलन नहीं करो तो माया का सूरज में जाती है भगवान। इसलिए श्रवण के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहें। और ये शिक्षा यहाँ सबके लिए है, ये नहीं कि केवल नए भक्त के लिए, चाहे हम नए भक्त हैं बड़ा रहकर श्रवण के दिन से छूट लोगे मैं आपको पकड़ लेगी। तो प्रभुपाद जी के सारे सिद्धांत के प्रवचन का मूल संदेश यह है कि भेदो परम भगवान किसी प्रकार से किसी का पक्ष नहीं लेते। भगवान अमीरों का पक्ष लेते हैं, गरीबों में किसी का पक्ष नहीं लेते। अगर व्यक्ति अमीर है पूर्व जन्म के अच्छे कर्म से जिसका परिणाम वो भोग रहा है, तो ये भोगेगा केवल थोड़ी देर के लिए। जैसे जहाज जब उड़ता है इधर ही हमेशा उड़ सकता है, इतना पेट्रोल है उसके आधार पर वापस लौटना पड़ता है। इधर के हम मोटर लगातार चला सकते हो, इतना पेट्रोल है उतना ही उसी आधार पर चलेगा। तो पूर्ण ज्ञान के संस्कार के कारण कई बार सुख प्राप्त हो जाता है, वो भी थोड़ी देर ही रहेगा। लाल नाम कहते हैं सारे स्कान में है मूर्ख व्यक्ति उतना ही सुख में मिलेगा जितने तुम्हारे आगे बढ़े, उसे एक बूंद ज्यादा नहीं मिलेगा। एक बूंद ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए मूर्ख व्यक्ति भौतिक कार्य में व्यास मत हो, पर किसके व्यस्त हो भगवान के सबको सौभाग्य है प्रभा जी की कृपा से हम सब जुड़े हैं इस संसार के साथ, और हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम गंभीरता से इस शिक्षा को अपनाएं और इस शिक्षा को आगे पहुंचाए। चार और भगवान की तरह क्या कहते हैं सब सारे भक्तों में हम सबको ये निर्णय लेना चाहिए जो निर्णय प्रभुपाद ने इस प्रवचन में इसकी चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, हमें हम भगवान के सब प्यार हो इसके लिए इतना प्यार है क्या नाम है तस्वीर खींचने जाने लगभग
समर्पण कर दोगे तो मैं रूपमान पहुंचा दूंगा मेरे पास। थैंक यू।
पापा जी ने ये जरूर कहा है सोलह माह का जाप करोगे रोज चाहे आपका पालन करोगे तो बिना शंका के भगवान के नाम पहुंच जाओगे। माला का जाप नियमों का पालन आवश्यक है। थैंक यू।
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.